اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خیر سے چوتھا لیکچر جس کا عنوان ہے مغیبات اکوان، وہ پڑھیں گے۔ اب یہ لفظ مغیبات اکوان کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک ڈیفینیشن جو اس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن میں آپ سے التجا کروں گا کہ ذرا اس لفظ مغیبات اکوان اس کو سمجھیں۔ یہ لفظ جو ہے مغیبات، یہ غیب سے نکلا ہے، اس کی روٹ جو ہے وہ ہے غیب، اور مغیبات یعنی غیب سے متعلق چیزیں جو غیب میں ہوں۔ اور اکوان کا لفظ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کن سے نکلا ہے، یعنی اس کی روٹ ورڈ کن ہے۔ کن کہنے کے بعد جو کچھ غیب میں ہے اس کو گویا کنٹرول کرنے کا نام ہے مغیبات اکوان۔ اس کو ہم انگلش میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ انویزیبل کنٹرولز۔ اب انویزیبل کنٹرولز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ جو ہم نے تین چیپٹر پہلے پڑھے ہیں اس کے لیے وہ ذہن بنایا گیا یا بنایا جا رہا ہے۔ تو جو آپ نے پڑھا تین چیپٹرز میں اس کا لب لباب اور خلاصہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو چار نقشے ہم نے دیکھے، صفحہ نمبر 11 پہ، صفحہ نمبر 19 پہ اور پیج نمبر 26 پہ اور پھر پیج نمبر 34 پہ، یہ ایک چاروں اگر ان ٹیبلز کو یا ان جدولز کو یا ان نقشوں کو اگر آپ توجہ سے سمجھ لیں تو گویا یہ تین چیپٹر جو ہم نے پڑھے یہ ان کا خلاصہ آ گیا تصویری صورت میں۔ یہ جو دیکھیں نا، ہم نے پہلا چیپٹر پڑھا کہ علم حصولی اور علم حضوری کیا چیز ہے، پھر اس کے ذیل میں خواب اور بیداری کا سلسلہ پڑا، اس میں پتہ چلا کہ وہمہ خیال اور تصور جو ہیں یہ احساس بنتے ہیں، چاہے یہ بیداری میں بنے یا خواب میں بنے۔ تو کیا ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، جس کو نظر آتی ہیں اسے ناظر کہا، جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ منظور ہے۔ تو یہ نظر جس منظور پہ ٹھہری، اس کا جو نظارہ آ رہا ہے، جو سین بن رہا ہے، اسے نظارہ کہا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر تھا یا دوسرا چیپٹر جس کا نام ثابتہ، آیان اور جویہ تھا، جس کو تجلی، نور اور روشنی بھی کہا گیا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہی ثابتہ روح اعظم کہلاتا ہے، آیان جو ہے یہ روح انسانی کہلاتا ہے، اور یہ جویہ جو ہے یہ روح حیوانی کہلاتا ہے، اور پھر انہی کو یہ تجلی اور تجلی کا وصف اور تجلی کی تشکیل اور پھر حرکت اور تکمیل اور تمثیل، پھر اسی کو علم، ارادہ یعنی کہ فکر اور عمل کہا گیا۔ اور یہ دونوں حالتوں میں تینوں چیزیں ایکسرسائز ہوتی ہیں، یا نیند کی حالت میں یا یعنی کہ خواب کے حواس کے ساتھ یا بیداری کے حواس کے ساتھ۔ اب یہی تین چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے تو ذات، صفات اور کائنات کہلا رہی ہیں۔ دیکھیں مختلف زاویے ہیں، جب یہ ذات، صفات اور کائنات بنی، یعنی ذات نے صفات کو اپنایا اور اس کا ڈسپلے کائنات کی صورت میں ہوا، تو وہ نقطہ جہاں یہ ذات کا سارا علم پڑا اس کی دو سطحیں بن گئیں، ایک علم القلم ہو گیا یا تجلی ذات کا علم ہو گیا، یعنی وہ سب سے اوپر کی سطح ہے۔ پھر اس سے نیچلی سطح جو ہے اسی کا نام اسماء الہیہ ہے، یعنی یہ اسماء الہیہ یہ تجلی صفات کا عالم ہے، اور یہ 11,500 قسم کی فریکوینسیاں ہیں، اسی کو علم لوح کہا۔ یہ نقطہ جو ہے یہاں سے ایک نور کا بیم نکل رہی ہے اور وہ عالم خلق میں ڈسپلے ہو رہی ہے۔ तो इस सारी बीम का नाम आलम में नूर रखा। और उसके बाद जो चौथा 34 सफ़े पे जो टेबल है या नक्शा है, उसमें ये बताया कि भी एक अल्लाह का इरादा है जो कि लाम इतना ही नूर की शक्ल में है। वहाँ पे कोई काम डिसाइड हुए और अमरे इलाही वजूद में आया, यानी अल्लाह ने कोई काम करना तय कर लिया। उसके आगे तीन जुज अज्जा बने। वो तीन जुज क्या हैं कि इरादा करता है शय का और शय मजहर बनती है या जहूर में आ जाती है, यानी डिस्प्ले शुरू हो जाता है। फिर आपने ये भी देखा कि लोहे महफूज और आलम जू क्या चीज़ है। लोहे महफूज पहली फिल्म है जो अल्लाह के जहन में है, वहाँ पे तस्वीरें स्टैटिक हैं, वहाँ पे सारी कायनात की जो तस्वीरें हैं वो स्टैटिक हैं। और जो लोहे दोयम है वहाँ पे गोया ये तस्वीरें हरकत में आ चुकी हैं। इनमें जब इंसानी इरादा शामिल होता है तो ये वापस पलट कर लोहे महफूज का हिस्सा बन जाती है। ये इसका मैंने एक ब्रीफ सा ओवरव्यू अर्ज कर दिया जो तीन चैप्टर हमने पढ़े थे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये हरकत ताकि हमें जो पीछे पढ़ा है उसकी फाउंडिंग यानी उसकी बुनियादों पे हम आगे बढ़ें। और ये ज़रूरी है कि हम पहले जो पढ़ें, जो भी पढ़ें, उसको अच्छी तरह कूट पीट के जगह पे बिठा दें, यानी अपने हाफ़ज़े में बिठा लें जिन भी अल्फाज में हो। तो ये चौथा चैप्टर मैं अर्ज करने लगा हूँ, इसे पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह ताला जब अपनी सिफात बयान करते हैं तो उन सिफात में वहदत और कसरत का तज़किरा शामिल है। उन सिफात में वहदत और कसरत का तज़किरा शामिल है। अल्लाह ताला ने मखलूक की ये तारीफ बयान की है कि मखलूक कसरत है और मखलूक के अंदर एहतियाज है, और मखलूक के लिए ज़रूरी है कि वो किसी की औलाद हो। ये भी ज़रूरी है कि मखलूक बाप की हैसियत में अपना तशख़ुस बरकरार रखे या माँ की हैसियत में उसका तशख़ुस। तशख़ुस कहते हैं ख़ुसूसियत की पहचान। ये तशख़ुस जो है असल में किसी भी शख्सियत की ख़ुसूसियत का नाम है, या किसी भी शख्सियत शख्स में जो खासियतें होती हैं उसको शख्सियत कहते हैं। शख्सियत कहते हैं शख्स की खासियतों को। अब आप कहेंगे मैं लफ्ज़ों से खेल रहा हूँ, नहीं, ये अल्फाज का जो माहियत है वो बता रही है कि इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। कि तशख़्ुस यानी कि उसको पहचान का ज़रिया, तो माँ की हैसियत में उसका तशख़्ुस मौजूद हो, यानी उसमें माँ की तमाम खसूसियात मौजूद हों, ममता हो। मखलूक ख़ानदान के बगैर नहीं होती, जबकि अल्लाह ताला इन सब बातों से बेनियाज है। चूँकि मखलूक कसरत है इसलिए ज़रूरी हो गया कि मखलूक के अंदर इनफरादी शऊर के साथ साथ कसरत और इज्तमाही शऊर भी हो, और इज्तमाही शऊर में दर्जा बंदी हो, और इज्तमाई हैसियत नोई एतबार से हो। यानी कि क्या मतलब है इज्तमाई, इज्तमाई करते रहते हैं, तो मतलब है पूरी नौ का, नोई तकाजों का, नोई ज़रूरियात का, नोई साख का इल्म हो। इज्तमाई हैसियत नोई एतबार से हो, और ये हैसियत हमारी रिश्तों के ऊपर कायम है, जैसे बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, ख़ानदान से ताल्लुकात वगैरह। इन रिश्तों को कायम रखने और रिश्तों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कायनात में जो सिलसिला कायम है वो सब जू के अंदर अमल पजीर है। और जू की मुख्तसर तारीफ ये है कि कायनात अल्लाह ताला की सिफात पर कायम, यानी अल्लाह की सिफात के फ्लो का नाम है जू। मैं यहाँ पे एक बात आपकी तवज्जो के लिए अर्ज कर देता हूँ, ये बात हजूर कलंदर बाब औलिया ने लौह कलम में बयान की है। वहदत का मतलब है बातिन और कसरत का मतलब है खारिज। अब इसमें एक बारीक रमज ये है कि अल्लाह वहदत है, यानी अल्लाह का कोई बात, उसका एक बातिन है, उसका इजहार जो है वो खुद उसकी बातिन का इजहार नहीं है, वो इनडायरेक्टली कायनात की सूरत में यानी सिफात के जरिए है, लेकिन मखलूकात का एक बातिन भी है और फिर उस बातिन का इजहार जो है वो उसका फिजिकल बॉडी है या उसके इर्द गिर्द की सारी ये फिजिकल या आलम नासूत जिसे कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड। तो ये वहदत और कसरत की एक डेफिनेशन ये भी है कि बातिन में जो चीज़ें हैं वो वहदत हैं यानी यूनिफाइड फॉर्म में, और बाहर ये प्लुरैलिटी की सूरत में है, कसरत की सूरत में है। अब जू की दूसरी तारीफ ये है, कायनात अज खुद वजूद में नहीं आई। ये बात हमारे साइंसदान कोई बिग बैंग कहता है, कोई बिग क्रंच कहता है, तो कोई कुछ कहता है, तो कोई एवोल्यूशन की थ्योरी लाता है, ये सारों को आप सेट असाइड कर दें। कायनात अज खुद वजूद में नहीं आई, किसी हस्ती ने उसको तख्लीक किया। ये लफ्ज हस्ती, हस्त मैंने होना, फारसी का लफ्ज है, उससे है हस्ती, यानी जो चीज वजूद रखती है, जो मौजूद है, यानी जो चीज है, उसे अंग्रेजी में लव डेटी कहते हैं। किसी हस्ती ने उसको तख्लीक की है, इसलिए जरूरी है कि तख्लीक का खालिक के साथ रब्त हो। ये है लॉजिक कि तख्लीक का अगर रब्त खालिक के साथ नहीं होगा, खालिक उसकी तरफ मतवजो नहीं होगा, वो अपने खालिक की तरफ मतवजो नहीं होगी, तो वो अपने वो फंक्शनैलिटीज, वो जो उसको सलाहियतें दी गई हैं उसको प्रॉपरली यूज़ करके परफॉर्म नहीं कर सकेगी। और ये रब्त हमें बताता है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, फिर पैदा होने के बाद वसाइल फराहम करने वाला अल्लाह है, और कायनात बशमूल इंसान यानी पूरी कायनात, इंसान उसमें शामिल है, हर हर कदम पर खालिक की मोहताज है। और तीसरे नंबर पर हम कायनाती हदूद से गुजरकर नोई हदूद में दाखिल होने के बाद इनफरादी हदूद में दाखिल होते हैं, यानी अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले हम अल्लाह के जहन में एक इज्तमाई शक्ल में थे, वहां से कायनाती शक्ल में आए, फिर वहां से नोई शक्ल में, फिर वहां से इनफरादी शक्ल में ढले, यानी हर बंदे को अपना इनफरादी शऊर हासिल है, वो शऊरी तौर पर ये बात जान लेता है कि मैं हूं। जू के ऊपर के दोनों सिलसिलों में कायनाती एतबार से और नोई एतबार से जानना, ये सब लाशौरी तहरीकात के ताबे है। यानी आलम में जू के ये जो ऊपर के दो दर्जे बताए गए, यानी नोई दर्जा और कायनाती दर्जा, ये सब क्या है, लाशौरी तहरीकात के ताबे है, लाशौरी, इसमें शऊर का कोई दखल नहीं है। यानी ये सारी तहरीकात, तहरीकात स्टिमुलस या अंग्रेजी में इनकी जमा स्टिमुली, तो ये जितनी भी तहरीकात हैं जो हमारे अंदर हरकत पैदा कर रही हैं वो सब लाशौरी दर्जे पे हैं, तो वो लाशौरी तहरीकात के ताबे है कायनाती एतबार से और नोई एतबार से। जब हम इनफरादी सतह पे उतर आते हैं तो हम शऊर में आ जाते हैं, फिर वो शऊरी तहरीकात दोनों मिलकर चलती हैं, लाशौरी भी और शऊरी भी। अब जू के चौथे सिलसिले में यानी चौथे दर्जे में इनफरादी तौर पर देखें ना, आप गिन के देख लें, अल्लाह के जहन से कायनाती सतह, फिर कायनात से यानी कि तमाम अनवा का इज्तमाई जहन कायनात कहला रहा है, फिर नोई हो गया तमाम अनवा का इज्तमाई कायनात हो गया, तो फिर इन एक नौ का वो नोई हो गया, फिर उस नौ के अंदर जितने अफराद हैं वो चौथे दर्जे पे आ गए। तो जू के चौथे सिलसिले में इनफरादी तौर पर कोई फर्द, यानी इंडिविजुअली कोई फर्द अपनी शक्लो सूरत एहसासात और हिसियात से वाकिफ हो जाता है। यानी ये जो मैं पर्सनली जानता हूँ कि इस वक्त मेरी क्या कैफियात हैं, इसी तरह आप सब भी अपनी अपनी जगह खूब जानते हैं कि मैं इस वक्त किस कैफियत में हूँ, क्या एहसासात हैं, मेरी हिसियात कितना काम कर रही हैं, मेरी शक्लो सूरत क्या है, मैं क्या हूँ। फिर वो एक सीढ़ी और उतरता है। यानी सबसे पहले देखे ना, बच्चा खुद से वाकिफ होता है, उसे एहसास होता है कि मैं हूँ। दुनिया में आने के बाद उसको अपने होने का एहसास होता है, फिर रफ्तार रफ्तार उसकी हिसियात काम करती है। फिर वो एक सीढ़ी और उतरता है। ये जू का गोया पांचवा मरहला है, और यही वो इदराक है जिसकी शरह में ये बात मख्फी है। यानी जिसकी अगर हम तशरीह करें तो उसमें ये बात छुपी हुई है कि अफराद कायनात का ताल्लुक, अफराद कायनात का रब या अफराद कायनात की मौजूदगी ऐसी हस्ती के साथ कायम है जो रगे जान से ज्यादा करीब है। और जब कोई बंदा नोई एतबार से इज्तमाई जहन के साथ इस बात का इदराक कर लेता है कि मेरी मौजूदगी एक ऐसी हस्ती के ताबे है जो जान से ज्यादा करीब है, तो उसे इदराक हो जाता है कि मेरा वजूद कायनात में कहीं मौजूद है। अब आप गौर करें कि आप अल्लाह के जहन से निकले, कायनाती सतह पे आए, उसके बाद नौई सतह पे, फिर इनफरादी सतह पे, आपको अपने होने का एहसास हुआ। अब आपने दोबारा वापस पलटना है और नौई सतह का इदराक हासिल करना है, उसके बाद फिर कायनाती सतह का इदराक हासिल करना है, फिर आपको अल्लाह के जहन में मौजूद अल्लाह की मकसदियत का कि अल्लाह क्यों चाहता था ये सारी मनाजिल छः की छः जो तय हुई, यानी तीन नीचे को और तीन वापसी की, तो ये है वो सित्ता ते अय्याम। तो के अब ऐसा बंदा जो ये छः तनज़लात को या ये छः मनाजिल को या छः दर्जों को जान लेता है, वो ऐसा बंदा एक फर्द की हरकत को दूसरे फर्द की हरकत के साथ और एक जर्रे की हरकत को दूसरे जर्रे की हरकत के साथ देख लेता है कि भाई इस जर्रे की हरकत से मेरा क्या ताल्लुक। यानी अपने साथ देखे ना, पानी बह रहा है तो आपके अंदर क्या तहरीक आती है। अगर आप एक नदी के किनारे खड़े नदी का पानी बहता देखते हैं तो आपके अंदर एक कैफियत बनती है, बनती है या नहीं। तो पानी के साथ जो आपका ताल्लुक है वो असल में इसी शऊर में हरकत का नतीजा है। अब इसकी देखें मिसालें क्या हजूर मुर्शिदे करीम दे रहे हैं। इसकी मिसाल जंजीर है, एक जंजीर है, जंजीर में बेशुमार कड़ियां हैं। हम हर कड़ी का नाम अलग अलग रखते हैं। मसलन एक कड़ी का नाम नौ इंसानी है, दूसरी का नाम जिन्नात है, तीसरी कड़ी का नाम फरिश्ते हैं, एक और कड़ी आसमानी कुर्रा है या कोई और कुर्रा है। जब कोई बंदा जंजीर को भरपूर नजर से देखेगा तो उसकी इज्तमाई नजर इन तमाम मखलूकात का अहाता कर लेगी। यानी वो जंजीर की कड़ी में नौ इंसानी को देखेगा, जिन्नात को देखेगा, फरिश्ते भी उसके सामने आ जाएंगे। न सिर्फ ये कि जिन्नात और फरिश्ते उसके सामने आ जाएंगे, बल्कि आसमानों के अंदर सितारे, सैयारे, कहकशानी निजाम और दीगर निजाम, देखिए इसके अलावा भी बहुत कुछ है, सब के सब उसके सामने आ जाते हैं। लोहे महफूज एक ऐसी स्क्रीन है, ये ऐसी फिल्म है जिसमें कायनात का इज्तमाई प्रोग्राम पूरा का पूरा हर हरकत के साथ महफूज है, जू का तसव्वुर रखने वाला बंदा, यानी जिसको जू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जू का तसव्वुर रखने वाला, जिसको जू का पूरा कॉन्सेप्ट वाजे हो जाता है, वो बंदा लोहे महफूज के नकूश को देख सकता है, समझ सकता है, और फिर उससे पहले दर्जे पे देख सकता है, फिर रफ्ता रफ्ता समझने लगता है, फिर महसूस करने लगता है, महसूस कर सकता है। तीन दर्जे बताए। अब यहां पे हमारे यहां अक्सर देखा गया है, लोगों को अल्लाह ने करम किया, उन्हें अगर कुछ नकूश दिख गए तो वो समझने से कासिर है, अगर समझ लिया तो फिर महसूस करने की नौबत नहीं आई और वो बोलना शुरू हो गए, तो वो गलत हो जाता है। लोहे महफूज चूंकि माजी, हाल और मुस्तकबिल का रिकॉर्ड है, इसलिए लोहे महफूज को देखने वाला बंदा हजारों साल पहले की चीजों या हजारों साल बाद आने वाले वाकयातों उनको देख सकता है। हमने लोहे महफूज को मिसाल के तौर पर फिल्म कहा है। अगर कोई कैमरा, ऐसा कैमरा ईजाद हो जाए कि पूरी दुनिया की यकजाई फिल्म, यानी ऐसी फिल्म जो सारी दुनिया को अपने अंदर यकजा कर ले, एक ही जगह पे ले आए, अपने अंदर महफूज कर ले, जरा तसव्वुर करें कैसी अजीब फिल्म होगी वो, कोई समझ आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब उस फिल्म को देखा जाएगा तो उसके अंदर दुनिया की तमाम चीजें मौजूद होंगी, और अगर उसे पर्दे पर डिस्प्ले किया जाएगा तो वो तमाम चीजें अपनी शक्लो सूरत और अपने रंगो रूप के साथ चलती फिरती और मुतहरक नजर आएंगी। अब यहां पे मजीद इस बात को समझाने के लिए वो फरमा रहे हैं कि समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कायनात, यानी ये समझाने के लिए कही जा रही है बात, कि कायनात अल्लाह ताला की बनाई हुई एक फिल्म है, उस प्रोग्राम को जब डिस्प्ले किया जाता है तो मुख्तलिफ हवास वजूद में आते हैं, यानी हवास का वजूद में आना भी उसी डिस्प्ले का एक हिस्सा है, फिर इज्तमाई हवास में, यानी इनफरादी हवास से ऊपर इज्तमाई हवास में या कायनाती हवास में, आदमी कायनात को एक जगह देखता है। अब ये मिसाल देखें, यानी बंदर है, वो बिल्ली है, गाय, भैंस, दरख्त, पत्ते, दरिया, पहाड़, जिन्नात, फरिश्ते वगैरह सब एक फिल्म में महफूज हैं, फिर ये इदराक इज्तमाई हैसियत इख्तियार कर लेता है। इज्तमाई हैसियत में आदमी के अंदर नोई शऊर पैदा हो जाता है, यानी वो जान लेता है कि मैं नौ इंसान हूँ, वो दूसरी तखलीक फला नौ है, तीसरी तखलीक फला नौ है। उसके बाद हवास मजीद तनजल करते हैं तो बंदे के अंदर तंजीमी शऊर पैदा हो जाता है। तंजीमी शऊर, तंजीम कहते हैं नज्म व ज़ब्त को, ऑर्गेनाइज करने को, एडमिनिस्टर करने को, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव शऊर उजागर होने लगता है। जब वो इस तरह से आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, वरना तो सब चीजें एक दूसरे के अंदर गड़मड़ होती हैं। इसी तंजीमी शऊर में वो इनफरादी शऊर और इदराक के साथ, यानी इनफरादी शऊर इदराक के साथ अपनी नौ का इदराक करता है और उसे अपनी पैदाइश और अपने हवास का इल्म हासिल हो जाता है। जब सालिक नोई और इनफरादी शऊर से वाकिफ हो जाता है तो वो देखता है कि तमाम नौएं बाहम दिगर मिली हुई हैं, यानी एक दूसरे में घुसी हुई, छुपी हुई, जुड़ी हुई, एक दूसरे में खल्त मल्त नजर आ रही हैं। अब कैसी अजीब तस्वीर होगी, जिसमें एक बड़ा सा हाथी है, हाथी के अंदर एक जराफा है, जराफे के अंदर एक शेर है, शेर के अंदर एक कुत्ता है, कुत्ते के अंदर एक बिल्ली है, बिल्ली के अंदर एक चूहा है, वो सारी तस्वीरें एक ही नुक्ते में है। तो कितना जोर चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? तो उसके लिए तंजीमी शऊर चाहिए, यानी वो जो हवास उसको हासिल हो, फिर वो तमाम नौएं जो बाहम दिगर मिली हुई हैं, आपस में मिली हुई हैं, तो वो देखता है, यानी ये उसे नजर आता है। अब ऐसी सूरत में उसे ये नजर आता है, ये नजर आता है कि गाय है, गाय के अंदर बकरी है, बकरी के अंदर कबूतर है, कबूतर के अंदर आदमी है, आदमी के अंदर चींटी है, यानी कायनात का प्रोग्राम गड मड नजर आता है। और जब शऊर इस काबिल हो जाता है कि वह नकूश को समझ सके, तो फिर वो गड मड प्रोग्राम अलग अलग नजर आता है और नौएं अलग अलग नजर आती हैं। मसलन लोहे महफूज पर नजर आता है कबूतर है, कबूतर एक है, तो फिर उस कबूतर की नस्ल के अरबों खरबों साए, शेड्स या अक्स, यानी एक कबूतर और फिर उसके अंडे बच्चे, अगली सारी नस्लें वो शेड की सूरत में नजर आती हैं उसको। ये देखे ना, साफ दिखता है कि ये बात कौन बता रहा है। ये वो बंदा बता रहा है जो साहिब मुशाहिदा है, जिसकी नजर में खुद इतनी सख्त है कि वो एक नौ के एक फर्द के सारे शेड देख रहे हैं। यही हाल नोए जिन्नात का है, यही हाल नोए फरिश्ता का है, यही हाल नोए इंसानी का है, और यही हाल तमाम जमादात नबातात हैवानात सितारों और सैयारों का है। जब नजर और ठहरती है, नजर में इतना ठहराव चाहिए, तो नोई गडमड प्रोग्राम फैलता है, यानी नजर ठहरती जाएगी तो वो गडमड प्रोग्राम फैलता जाएगा या वाजे होता जाएगा, या यूं कहिए कि तसव्वुर के अंदर इतनी सकत पैदा हो जाती है कि शऊर उसकी तशरीह करता है। इस तशरीह में हर नौ का अलग अलग इनफरादी प्रोग्राम नज़र के सामने आ जाता है, नज़र के अंदर मजीद गहराई पैदा होती है, तो ये नोई प्रोग्राम इनफरादी प्रोग्राम में तकसीम हो जाता है। उस तकसीम में हर आदमी खुद को अलग अलग महसूस करता है, यानी ये तो हो गया ना, वो एक बंदा जो इस तरह देखता है, लेकिन ये नोई प्रोग्राम की तकसीम इस तरह है, हर बंदा अपनी अपनी जगह फील कर रहा है कि मैं इनफरादी हूं। हर नौ का हर फर्द खुद को इनफरादी हैसियत में महसूस करता है। इनफरादी हैसियत में महसूस करने के बाद शऊर के अंदर इतनी सकत और ताकत आ जाती है कि इंसान अपनी पैदाइश के मराहिल से वाकिफ हो जाता है। पैदाइश के मरहले से वाकफियत का मतलब है कि नौ इंसानी के अफराद की पैदाइश किन अवामिल पर हो रही है, अवामिल किन वजूहात की बिना पर हो रही है, फैक्टर्स क्या हैं, अवामिल फैक्टर्स, यानी किन वजूहात की बिना पर हो रही है, ये बात समझ में आ जाती है। उसके बाद हर फर्द अपनी शक्ल सूरत और हवास से वकूफ हासिल करता है, पूरे कायनाती निजाम को अहाता करने की इस सलाहियत को तसव्वुफ में मुगीबात इकवान कहते हैं। दोबारा सुने, पूरे कायनाती निजाम को अहाता करने की सलाहियत को तसव्वुफ में मुगीबात इकवान कहते हैं। मुगीबात इकवान के हामिल बंदे के अंदर इतनी वुसअत पैदा हो जाती है कि वो हजारों साल पहले के गुजरे हुए हालात और वाकयात और हजारों साल बाद आने वाले हालात और वाकयात को देख लेता है और उसकी तफसीलात से बाखबर हो जाता है। माशाल्लाह यहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल हो गया जी। तो मुगीबात इकवान समझ आ गया कि ये वो जो चार नहरें, चार दर्जे, चार शऊर, अल्लाह का जहन, अल्लाह के जहन से निकली हुई कायनात, उसकी सिफात का इजहार, फिर वो कायनात जो है वो अनवा में बटी हुई, अनवा अफराद में बटे हुए, और जब बंदा ऊपर से ये मंजिलें तय करता नीचे आता है तो यहाँ पे आके वो वापस नौई शऊर हासिल करता है इनफरादी शऊर से उभर कर, फिर उसके बाद वो मजीद उभरता है कायनाती शऊर हासिल करता है, और फिर उससे ऊपर उठ के वो मकसद समझ आता है जिसके तहत अल्लाह ने ये सारा निज़ाम वज़ा किया, वो पूरे प्रोग्राम से आगाह हो जाता है। ठीक हो गया जी।